सयानम बिस्तर में लेटे हुए, इमम इस शरीर, उत्सृज्य त्याग कर, स्वसंतम श्वास लेता हुआ, पुरुषः जीव, जथा जिस प्रकार, कर्म कार्य, आत्मनि मन में, आहितम संपन्न हुआ, भुंगते भोक्ता है, तादृशेना ऐसा ही शरीर से, इतरेणा भिन्न शरीर से, बा अथवा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। स्वप्न देखते समय जीव अपने वास्तविक शरीर को त्याग देता है और अपने मन तथा बुद्धि के कार्य से वे दूसरे शरीर में तथा देवता या कुत्ते के शरीर में प्रवेश करता है। इस स्थूल शरीर को त्याग कर जीव इस लोक अथवा अन्य लोक के पशु या देवता के शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रकार वो अपने जीवन की कर्म फल को भोगता है। तात्पर्य। यद्यपि मान बुद्धि तथा अहंकार सुख तथा दुख के मूल कारण है, यद्यपि मान बुद्धि तथा अहंकार सुख तथा दुख की मूल कारण है, तो भी भोगने के लिए निमित्त व कारण स्वरूप स्थूल शरीर की आवश्यकता पड़ती है। स्थूल शरीर भले बदलता रहे किंतु सूक्ष्म शरीर सक्रिय रहता है। जब तक जीव को अन्य स्थूल शरीर नहीं प्राप्त हो जाता, वो सूक्ष्म शरीर या भूत प्रेत के शरीर में रहा आता है। स्थूल शरीर के बिना ही जब सूक्ष्म शरीर कार्य करता है, तब जीव भूत प्रेत बन जाता है। स्थूल शरीर के बिना ही जब सूक्ष्म शरीर कार्य करता है, तब जीव भूत प्रेत बन जाता है। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, सयानम इम उत्सृज्य स्वसंतम। स्थूल शरीर बिस्तर पर लेटकर आराम कर सकता है और स्थूल शरीर रूपी यंत्र की कार्य करते रहने पर भी जीव स्थूल शरीर को छोड़कर स्वप्न में चला जाता है और फिर उसी में लौट आता है। जब वह शरीर में लौट आता है तो स्वप्नों को भूल जाता है। इस प्रकार जब जीव अन्य स्थूल शरीर धारण करता है तो वह अपने वर्तमान स्थूल शरीर को भूल जाता है। निष्कर्ष यह है कि मन बुद्धि तथा अहंकार का सूक्ष्म शरीर आकांक्षाओं का वातावरण उत्पन्न कर देता है, जिसे जीव सूक्ष्म शरीर में ही भोगता है। वास्तव में जीव तो सूक्ष्म शरीर में ही रहता है, भले ही स्थूल शरीर बदलता है और जीव विभिन्न लोक में शरीर में निवास करे, सूक्ष्म शरीर में जीव द्वारा संपन्न सारे कार्य मोहपूर्ण कहलाता है, क्योंकि यह स्थायी नहीं होता है। मुख्य का अर्थ है सूक्ष्म देह की चंगुल से बाहर निकलना, जबकि स्थूल शरीर से मुख्य का अर्थ है एक स्थूल शरीर से दूसरे में आत्मा का देहांतरकरण। और एक बार, मुख्य का अर्थ है सूक्ष्म देह की चंगुल से बाहर निकलना, जबकि स्थूल शरीर का मुख्य का अर्थ है एक स्थूल शरीर से दूसरे में आत्मा का देहांतरकरण। जब मन को कृष्ण चेतना की शिक्षा मिलती है तो मनुष्य या तो स्वर्गलोक या वैकुंठ लोक को जाता है। अतः मनुष्य को शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से प्राप्त वैदिक आदेश से प्राप्त ज्ञान की अनुसरण से अपने चेतना बदलनी होती। यदि हम इस जीवन में सूक्ष्म शरीर को कृष्ण विषयक चिंतन का प्रशिक्षण देते हैं तो इस स्थूल शरीर को छोड़ने पर हम कृष्ण लोक को प्राप्त करते हैं। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने की है, भगवद गीता 4:9। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः तत्वादेहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोअर्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरी प्राकट्य तथा कर्म की दिव्य प्रकृति से अवगत है वो इस शरीर को त्यागने के पश्चात इस संसार में जन्म नहीं लेता बल्कि मेरी शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार स्थूल शरीर का परिवर्तन उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि सूक्ष्म शरीर का। कृष्ण भ्रमरामृत आंदोलन लोगों में सूक्ष्म शरीर को प्रकाशित करने की शिक्षा प्रदान करता है। इस प्रसंग में आदर्श उदाहरण अम्बरीश महाराज हैं, जिन्होंने अपने मन को सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में लिप्त रखा था। सवे मन कृष्ण पदारविंदयो। इस प्रकार हमें अर्चा विग्रह रूप में उपस्थित श्री कृष्ण की चरण कमल में अपने मन को निरंतर स्थिर रखना चाहिए। हमें उनकी पूजा भी करनी चाहिए। यदि हम अपनी वाणी को भगवान की गुणगान में और कान को उनकी लीलाओं की श्रवण करने में लगाएं और मन नियम के द्वारा मन को कृष्ण चेतना अग्रसर करने के लिए अक्षत रखें तो निश्चय ही हम आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकेंगे। तब मृत्यु के समय मन बुद्धि तथा अहंकार दूषित नहीं होंगे। जीव के साथ मन बुद्धि तथा अहंकार भी उपस्थित रहते हैं। जब मन बुद्धि तथा अहंकार शुद्ध हो जाता है तो जीव की सारी कर्मेंद्रियां आध्यात्मिक बन जाती हैं। इस तरह जीव सच्चिदानंद रूप प्राप्त कर लेता है। परमेश्वर तो सदैव सच्चिदानंद रूप है किंतु जीव भगवान का अंश होकर भी सुख उपभोग की इच्छा से इस संसार में आकर दूषित हो जाता है। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में अपने धाम लौटने की अनोखा बताए हैं। मनमना भव मद भक्त मज्जाजी मांग नमस्कुरो माम एष्यस्य जुक्तेव आत्मानं मत्परायण। सदैव मेरे चिंतन करो और मेरी भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस तरह मुझ में पूर्णतया मग्न रहने पर तुम मेरी पास आ सकोगे। श्रील प्रभुपाद की जय। ओं अज्ञान तमिरांधस्य ज्ञानंजन सलकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्रीजुता पदकमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं सागर जातम सहगण रघुनाथं नित्वं त्वं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादन सहगण ललिता श्री विशाखानितंस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये।
वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्यदेशतारिणे। यं प्रवजन्तमनुपेत्यमपेत्य कृत्या दैपायन विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मि। जत्कीर्तनं जत्स्मरणं जदीक्षणं जदवन्दनं जश्रवणं जदरहणं लोकस्य सद्यो विधुनाति कल्मष तस्मै सुभद्रश्रवसे नमः नमः। जन्ता प्रविष्टमम वाचमिमं प्रसुप्ता संजीवयति अखिलशक्तिधर सुधाम्ना। अन्यस्य हस्तचरणो श्रवणतुकादिन् प्राणान् नमः भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान् नमः भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हरे कृष्ण। तो ये जो प्रसंग हम अभी कई दिन से हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार विदुर जी को मैत्र मुनि ने कर्म कांड की परिणाम स्वरूप ये यज्ञ विधि को बतलाते हैं। जय श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री राधा रास विहारी ललिता विशाखा की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। ये प्रसंग की ये शिक्षा है कि मनुष्य बहुत प्रकार की भावना से युक्त है। उनके मन विभिन्न प्रकार की कर्म उद्योग करने के लिए विभिन्न प्रकार संकल्प करता है, परंतु जब तक मन इसकी परिणाम को अनुभव नहीं करता है तब तक उस कार्य से निवृत्ति नहीं हो सकता है। इसलिए संसार में जब जीव आता है इस भौतिक शरीर को ग्रहण करके इसके मूल कारण होता है मन। इस मन को श्रृंखलित करके कैसे कृष्ण के चरण में लगाना है इस विधि सारे शास्त्र संस्तुति करता है। विशेष करके नारद मुनि ये जो उपदेश प्राचीन वहीर राजा को दे रहे हैं इसके माध्यम से मैत्र जी ये शिक्षा देना चाहते हैं विदुर को कि आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, परंतु तीर्थ यात्रा करते समय आप बहुत प्रकार के मुझे प्रश्न पूछे हैं। ऐसे उन्होंने 22 श्लोक में 27 प्रश्न पूछे थे, इसमें से एक यज्ञ विधि की परिणाम स्वरूप का इसकी क्या फल है इस विषय में जिज्ञासा किए थे। तो इसलिए नारद मुनि इस प्रसंग को जब समाप्त करते हैं तो सुखदेव गोस्वामी वो मंतव्य प्रदान करते हैं कि एतत् आधात्म परोक्षम गीतम देवर्षि अमोघं देवर्षि नारदः। ये जो प्रसंग व नरेशन जो नारद मुनि प्राचीन वाहिर को बताए वो अधात्म गीत है, जो आत्मा की चेतना को जागृत करने वाला है। ज श्रावयत ज श्रुणयात, जो सुनता है और जो बोलता है, स लिंगेन विमुच्यते। वास्तविक हमारे जो शरीर है यह है लिंग शरीर, जिसमें काम वासना ही स्टोर है। तो ये जो लिंग शरीर बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, जो इस प्रसंग को सुनता है वो तुरंत इस लिंग शरीर से वा जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। तो कितने ये गहराई विषय है, इसलिए कहते हैं आध्यात्मम परोक्षम। यद्य यह एक उक्ति है, एक स्टोरी है, एक आख्यान है, परंतु इसमें से बहुत गुह्य से गुह्य विषय की चर्चा हुई है, जिसको विज्ञान तक नहीं पहुंच सकता है, सिर्फ इसको भक्ति के द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। भक्त्या श्रुत्या गुहितया। तो जब प्राचीन वहरी को नारद मुनि इस प्रसंग को बतला रहे थे, तो प्रसंग को सुनने के बाद प्राचीन वहीर ने कहे कि देखिए, मेरे जो पहले आचार्य थे, गुरु थे, उन्होंने दूसरे ढंग से मुझे उपदेश दिए थे। मुझे लगता है कि वो वास्तविक उनको इस आध्यात्मिक ज्ञान पूरी तरह वो नहीं जानते हैं, इसलिए वो कहते हैं इति वेद विदाम बादम। ऐसे वो वेद को तो जानते हैं, परंतु उसमें बाद है, बहुत सारी मिसकंसेप्शन है, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन। इसमें बहुत सारी तत्व हैं, परंतु ये तत्व में वो निपुण नहीं है, बादम, इसमें भेद है। परंतु मेरे इस प्रसंग में एक संशय है। क्या संशय है? ना आप जैसे बतलाए कि ये शरीर, पंचभौतिक शरीर नष्ट हो जाता है और ये आत्मा सूक्ष्म शरीर के द्वारा दूसरे स्थान में देहांतरण करता है, परंतु ये शरीर की समाप्ति होने पर फिर जो अगले शरीर मिलता है, तो अगले शरीर क्यों पूर्व शरीर की कर्मों को भोग करता है? क्योंकि जो कर्म किया था इस पंचभौतिक शरीर में, वो शरीर तो समाप्त हो गया, फिर अगले शरीर में कैसे वो भोग करता है? प्रश्न 58 और 59 श्लोक में पूछे थे, कर्माणि आरभेत ये न पुमान इह विहायतम, इस शरीर को छोड़ करके अमूत्र अन्येन देहेन जुष्टानि, अगले शरीर में इस कर्म की फल को फिर भोग करता है। और ये श्रुति में है, जद श्रुते इति वेद विदाम बादम। इस प्रकार जो वेदवीत हैं वो ऐसे ही तर्क करते हैं, कर्म जत क्रियते प्रोक्तम, कि शरीर से ही हम कर्म करते हैं, परंतु यह कर्म फिर अगले शरीर कैसे भोग करता है? न परोक्षम प्रकाशते। वास्तविक ऐसे जो आप मुझे स्टोरी सुनाए, इसके द्वारा ये बोध नहीं होता है, इसलिए अत्र संशय, इसमें मेरे एक संशय है, इसको आप निवारण करें। तो नारद जी कहते हैं ये नहीं बा आरभते कर्म तेने तेन एव अमूत्र तत्पुमान भुंक्ते ह्य व्यवधानेन लिंगेन मनसा स्वयं। कहते जिस प्रकार एव आरभते कर्म, कि हम लोग कर्म किसके द्वारा करते हैं? कर्म इंद्रियों के द्वारा, कर्म इंद्रिय ही कर्म योग, जैसे मनुष्य करता है, तो वो कर्म की फल भुंकते ही व्यवधाने न, वो इमीडिएटली इस फल को भोग नहीं करता है, कुछ समय के बाद भोग करता है। और जब वो कर्म नहीं करता है, ये शरीर से नहीं करता है, परंतु मनसा स्वयं, लिंगेन मनसा, जो सूक्ष्म शरीर है जिसको मन बुद्धि अहंकार कहते हैं, तो उसमें विशेष करके मन लगा रहता है। तो मन भी कार्य करता है, यद्यो भौतिक शरीर कार्य नहीं करता है, परंतु मन उस समय कार्य में रत रहता है। किस प्रकार मन रत रहता है, तो इसके उदाहरण कहते हैं, सयानम सयानम उत्सृज्य स्वसंतम पुरुषम जथा, स्वसंतम सयानम पुरुष उत्सृज्य जथा, जिस प्रकार सोते समय, अर्थात यह भौतिक शरीर जब सो जाता है रात को, हम लोग सब रेस्ट लेते हैं, उस समय जीवंत शरीर जो स्वसंतम स्वसंतम सयानम, परंतु उसके अंदर एक शरीर जो श्वास लेता है, यह शरीर सो जाता है परंतु अंदर के एक शरीर श्वास लेता है, और फिर क्या करता है, श्वास लेते के साथ कर्मा आत्मनि अहितम भुंगते, मन से वो जो कर्म किया है ये कर्म की फल को भोग करता भी है, अर्थात सुख दुख की अनुभूति किसमें होती है, मन में। इवन सोने पर भी कभी कभी हम विचलित हो जाते हैं, नींद से जग जाते हैं, अरे इसे कैसे हुआ, तो कहते हैं सोते समय भी मन सुख दुख की भी वो करता है, तादृश है ना इतरेण बा, उसी प्रकार यह सूक्ष्म शरीर जब दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है उसी प्रकार सुख दुख को वो करता है, यह लजिक दी, क्योंकि दृष्टांत के द्वारा हम दृष्टि को प्राप्त करते हैं, सत्य वस्तु को जानने के लिए दृष्टांत की आवश्यकता है, इसलिए आचार्य लोग ने दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं, जैसे नारद जी अभी समझाते हैं, क्योंकि दृष्टि जब तक नहीं बदलता है वास्तविक हम एक उच्च स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिसको भगवान भगवद गीता में कहते हैं परम दृष्ट्वा निवर्तते, जब परम की दृष्टि प्राप्त होती है तब हम नीच विषय से हमारा मन को हम हटा सकते हैं, निवृत्ति कर सकते हैं, विषया विनिवर्तन्ते। तो कुछ होता है ये आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा हम परिवर्तन करते हैं, परंतु भगवान कहते हैं मेरी भक्ति रस से भी युक्त होने से इस प्रकार मन परिवर्तित हो सकता है, रस वर्जम रस अपि अस्यम। तो कभी कभी हम फास्टिंग भी करते हैं निराहारस्य, तो उसके द्वारा भी मन शुद्ध होता है, परंतु विशेष प्रकार से जो भक्ति के द्वारा मन शुद्ध हो जाता है तो ये शुद्ध मन से हम परम की अनुभूति कर सकते हैं, परम दृष्ट्वा। तो इसलिए श्रीधर स्वामी इस प्रभुपाद की तात्पर्य को आधार बना करके, सॉरी प्रभुपाद ने श्रीधर स्वामी की तात्पर्य को आधार बना करके पहला तीन लाइन बोले हैं, लिंग देह विशिष्टस्य भुंक्ते स्वप्न दृष्टते न स्पष्टयति। इसको प्रभुपाद कहते हैं इस अहंकार मन और बुद्धि सुख दुख की मूल कारण है, तो भी भोगने के लिए उनको स्थूल शरीर की आवश्यकता है। लिंग देह विशिष्टस्य भंक्तृत्वम स्वप्न दृष्टते न स्पष्टम इति। लिंग शरीर में मन में जो भी हम विचार रखते हैं स्थूल शरीर के बिना हम भोग नहीं सकते हैं। किस प्रकार भोग है, कहते सयानम इम जाग्रत देह स्वसंतम जीवंतम उत्सृज्यम तद अभिमान तोक्त्वा आत्मनि मनसि संस्कार स्वरूपेण अहितम कर्म जथा भुंक्ते तादृशेन सयान देह सदृशेन कर्म उपस्थापितेन देह अनान्येन बा पंच प
पंचादि देहेन तथा लोकांतरम पति भाव।
जैसे हम सभी की एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि जो भी हम विचार प्रस्तुत करते हैं, मान लीजिए हमको कुछ खाने की इच्छा है, मन इच्छा करता है, परंतु इसकी स्वाद लेने के लिए क्या आवश्यकता है? जीवा की आवश्यकता है। तो ये जीवा के द्वारा मन की सोचे हुए जो भावना है इसको हम पूर्ति करते हैं। तो ये जो हमारा ग्रस बॉडी है ये एक इंस्ट्रूमेंट है। किसकी इंस्ट्रूमेंट है? सूक्ष्म शरीर का यह एक करण है, यंत्र है। तो इसलिए सूक्ष्म शरीर में जो कामना होती है और उसकी अभिमान, इसमें क्या अभिमान होती है? भोक्तृत्व और कर्तृत्व। एक कर्तापन होता है और भोक्तापन होता है। कर्ता अहं इति मन्यते और भोक्ता अहं, ईश्वर अहं अहं भोगी। तो ये जो कंटामिनेट कॉन्शसनेस जिसको कहते हैं, ये ही वास्तविक हमारी बंधन की कारण है। हमारी वास्तविक ये स्थूल शरीर बंधन नहीं है। बंधन यदि कहे मन को, मन भी नहीं है वास्तविक। मन की जो वासना है, ग्रंथि युक्त वासना, तो इसके द्वारा जीवात्मा को ऐसे ही कर्मात्मकं जेन शरीर बंध, ये कर्म से निर्मित ये जो शरीर है प्राप्त होता है। कर्मात्मकम, ये जो लिंग शरीर के स्वरूप क्या है? कर्म ही है। और ये इस कर्म को हम कैसे स्टोरेज किए हैं, इकट्ठा किए हैं? ना इस प्रकार की भावना से, एवं मन प्रंजुक्त है। इस प्रकार मन इस कर्म में जुक्त हो जाता है। किस प्रकार? विषयान धिया, विषय को भोग करने की इच्छा से ये मन जुक्त होता है। किसके साथ? इंद्रियों के साथ, जिसको हम कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। मन षष्टाणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं कर्षण शब्द का अर्थ है हल करना। हल हम कैसे करते हैं? आजकल ट्रैक्टर निकल गया है, परंतु गांव में जब हल करते हैं किसके द्वारा? किसान, बैल के द्वारा। तो उसी प्रकार ये जो मान जो है वो पांच बैल को जोड़ा है, इंद्रिय रूपी पांच बैल को जोड़ा है और उससे वो हल करता है। हल करके क्या करता है? उसमें बीज डालता है। किस प्रकार बीज? कर्म की बीज, जो इस स्थूल शरीर से करता है। तो इस प्रकार जब कर्म करता है, क्लेशद अपि आसन्न देह न साधु मन्ये। तो ऋषभदेव कहते हैं कि इसी प्रकार जब खेती करके वो बीज डालता है तो उनकी फल स्वरूप जो हार्वेस्ट करता है, बीज से जो प्राप्त करता है, वो क्या अनाज प्राप्त करता है? आसन्न असन्न, असत टेम्पररी और क्लेशद कष्टपूर्ण शरीर को प्राप्त करता है। इसलिए कहते हैं कि इसी प्रकार जो जीवात्मा जो कर्म से युक्त होकर के ऐसे कर्म करता है, अविद्या के द्वारा प्रेरित होकर के कर्म करता है, उसके द्वारा वो कर्म बंधन को क्रिएट करता है। और ये जो कर्म बंधन होता है तो बार बार जीव इस शरीर जो बंधक कहते हैं, जो कंडीशन सोल का अर्थ प्रभुपाद कहते हैं कि लिविंग एंटिटी व्हेन ही अचीव दिस ग्रास बॉडी ही कैन नॉट वर्क ही कैन वर्क अकॉर्डिंगली दैट बॉडी। जैसे कि एक कुत्ता है जो ऐसे कुत्ते के शरीर प्राप्त कर लिया है जीवात्मा, तो वो अहंकार से वशीभूत होकर ये सोचता है कि मैं कुत्ता हूं और वो भूखना शुरू करता है। तो उसी प्रकार ये भी जो शरीर है, मनुष्य शरीर है, ये भी एक प्रकार यंत्र है। परंतु हम जो सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूं, मैं एक स्त्री हूं, पुरुष हूं, मैं युवक हूं, मैं बुद्धिमान हूं, तो इस प्रकार की अज्ञान के आवेश हैं। इसको कहते हैं अविद्या आत्मनम। मन इस अविद्या के द्वारा जब ग्रसित होता है तो तुरंत उनको कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहं इति मन्यते, मैं करता हूं। और करने के बाद फिर क्या करता है, ये फल की भोक्ता भी मैं हूं। तो फिर इस प्रकार कर्ता और भोक्तापन से जीव बन जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब तक जीव मेरी पोजीशन को ठीक रूप से नहीं समझता है तब तक इस भौतिक शरीर को प्राप्त करता है। ऋषभदेव भी कहते हैं जाबत न जिज्ञासित आत्म तत्वम, जब तक जिज्ञासा नहीं करता है वह इस आत्म तत्व को ठीक रूप से नहीं समझता है। क्या है, अहं ही सर्वज्ञानम भोक्ता च प्रभुरेव च, कि मैं सभी यज्ञों का भोक्ता हूं। हम जितनी सारी कर्म करते हैं सभी प्रकार कर्मों को हम यज्ञ के रूप में ले सकते हैं, एवं बहुविधा यज्ञ। कर्म को भी यज्ञ कहते हैं, ज्ञान को भी यज्ञ कहते हैं, तपस्या को भी यज्ञ कहते हैं। परंतु ये सारी कर्म की भोक्ता है भगवान, इसलिए भगवान कहते कर्मण्ये बा अधिकार मा फलेषु, फल में नहीं अधिकार है आपकी, सिर्फ कर्म करने के अधिकार है। तो जो इसी प्रकार समझता है, हम कर्म भी करते हैं, पांच चीज के द्वारा हम कर्म करते हैं, अधिष्ठान तथा कर्ता करणं च पृथक विधाम विविधस्य पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचम। तो सभी चीज में देखने से अल्टीमेटली दैव ही कर्म के कारण है। परंतु जब अभी हमारा जो अभिमान है, हम कर्ता हैं, इस कार्य की कर्ता हैं, तो ये अभिमान ये चार चीज क्रिएट करता है। जब दैव को भूल जाएंगी तब ये इंद्रियां, ये शरीर और ये शरीर को प्रेरित करने वाला जो आत्मशक्ति, ये सब अविद्या से ग्रसित हो जाएंगे। तो इसलिए जो मन इस पांच इंद्रियों के द्वारा जो कर्म में प्रयुक्त होता है, तो यही सूक्ष्म रूप से ही उनको एक नया शरीर प्रस्तुत करता है। यह प्रसंग दशम स्कंध की पहला अध्याय में, जिस समय कंस ने देवकी को मारने के लिए तलवार उठा लिए आकाशवाणी सुनकर के, तो उस समय वसुदेव ने देवकी को बचाने के लिए ये दर्शन कहे। ये दशम स्कंध में उनचालीस श्लोक है, पहला अध्याय के उनचालीस श्लोक है। उसमें कहते हैं कि देह पंचत्वम आपन्ने देही कर्मानुसो बसह देहांतरम अनुप्राप्तः प्राक्तनं त्यजते बपुः, कि ये जो आत्मा देही कर्म अनुगह बसह, कर्म के द्वारा वशीभूत होकर के पंचोत्तम देह आपन्न, ये पंचभौतिक शरीर को प्राप्त किए हैं, वो पंचभौतिक शरीर क्या होता है, देहांतर अनुप्राप्त। ऐसे नहीं है कि जैसे देह प्राप्त हुआ था ऐसे ही है एज इट इज, ये परिवर्तन होता है कि नहीं, कौमार जौवन जरा कत जीवात्मा जिस शरीर को अभी इसी शरीर में जो परिवर्तन करता है, तो उसी प्रकार अगले शरीर भी एक परिवर्तन है। तथा देहांतर प्राप्ति देहीन अस्मिन जथा देहे, कौमारम जौवनम जरा जथा देही, इस शरीर में बचपन से लेकर के बुढ़ापा तक परिवर्तन करता है, उसी प्रकार देहांतर प्राप्त, इस देह के अंतर होने पर फिर आत्मा के दूसरे शरीर प्राप्त करता है। और भुंगते प्रकृति जान गुणान, तो क्या भोग करता है? जो प्रकृति में बसीभूत होकर कर्म किया था, तो कर्म की फल स्वरूप यह शरीर है जो प्रकृति से उत्पन्न है। हम सोचेंगे तो प्रकृति दूसरे प्रकार से कार्य करता है, नहीं, प्रकृति शरीर में भी कार्य करती है। कैसे? जैसे तमोगुण की विकार होने पर इस पंच भौतिक शरीर प्राप्त होता है, और रजोगुण की विकार होने पर इंद्रियां प्राप्त होता है, और सत्वगुण की विकार होने पर मन प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर की जो जीवात्मा को सुख दुख प्राप्त होता है, इनके द्वारा ही, इंद्रिय, मन और शरीर के द्वारा। और ये शरीर सिर्फ अहंकार से बना हुआ है, ये शरीर की जो सूक्ष्म आवरण है ये है अहंकार। तो इसलिए वसुदेव समझाते हैं कि देखो, ये शरीर को एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा। कब ना कहते हैं अद्य बा सतांते, अभी भी छोड़ सकते हैं, 100 साल भी आप जी सकते हैं, परंतु छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप सोचिए आपके लिए क्या करणीय है। तो कंस का ये कैसे बात है, आप पता है कि मैं भी कालनामी था, हाँ बहुत दिन तक मैं युद्ध किया था, परंतु विष्णु ने छल करके मुझे मारा है, इसलिए मैं तो उसको बदला लेने के लिए जन्म लिया हूं, तो मैं कैसे मर सकता हूं। तो कंस ने सोच रहा था कि मैं उसी प्रकार कालनेमी के केवल एक रूप हूं। तो ये कहते नहीं नहीं, आप देखो आप परिवर्तन कर चुके हैं, जो पहले के आपके कालनेम के शरीर था तो वो शरीर नहीं है कंस के रूप में। कहते मैं कैसे समझूं? तो कहते हैं ब्रजन तिष्ठन पदेक, आप जब चलते समय ना, आप देखो एक पैर उठाने के बाद एकेन गच्छति, फिर दूसरा पैर, पहला एक जमाने के बाद फिर दूसरा पैर आप उठाते हैं, है कि नहीं? आप बताओ, दौड़ते समय भी चलते समय भी एक पैर जमाने के बाद फिर दूसरा पैर उठाते हैं। तो उसी प्रकार तथा तृण चढ़े के एवं देही कर्म गतम गस। और एक कहते हैं कि एक कीड़ा होता है जो वृक्ष में बा टहनियों में रहता है, तो एक पत्ता को पकड़ने के बाद उसके दूसरे पैर हटता है और दूसरे पत्ता पर हो जाता है। जथा तृण चढ़ो के एवं, तो उसी प्रकार हम इस जीवन में जैसे कर्म करके हम कर्म के फल को संग्रह किए हैं, तो उसी प्रकार हमारे अगले जीवन फिक्स होने के बाद फिर इस शरीर को हम छोड़ते हैं। अर्थात पहला हमारा जीवन बा शरीर निश्चित हो जाता है, फिर बाद में हम इस पंचभौतिक शरीर को त्याग करते हैं। तो फिर वो ऐसा ही उदाहरण देते हैं, आज इसे नारद मुनि समझाते हैं, कहते स्वप्ने जथा पश्यन्ति देहमिदृशम मनोरथेन अभिनिविष्ट चेतसः दृष्ट श्रुत्वाभ्यं मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत् किमपि ह्यापश्नुति। तो जैसे सोने पर हमारी जो वास्तविक दुनिया से हम अलग हो जाते हैं, ये शरीर अलग है, उस दुनिया के साथ नहीं रहता है, परंतु हमारी मन उस दुनिया का फिर चिंतन करता है, वहां उस दुनिया की परे। ऐसा नहीं है कि मन हमेशा जो कार्य हम किए हैं उसको चिंतन करता है, ऐसे भी मन जो विषय हम कभी देखे नहीं इस शरीर में, कुछ सुने नहीं, फिर भी उस शरीर के विषय में वो सोचता है। कभी कभी हम ड्रीम देखते हैं ना स्वप्न में, तो देखते कि हम आकाश में उड़ते हैं, कभी भी हम जीवन में फ्लाइट नहीं देखे होंगे, परंतु स्वप्न में देखते हैं हम उड़ते हैं पक्षी जैसे, जिसे कहते हैं आकाश पुष्पायते, जैसे आकाश में जैसे फूल तोड़ना है, आसमान में कोई फूल नहीं होता है, परंतु ऐसे ही विजन आता है। तो इसी प्रकार प्रपद्यते तत् किमापिं ह्यापस्मृति, कहते इसी प्रकार ये जो स्मृति है ये सिर्फ ये कर्म से नहीं है, बस शरीर से नहीं है, ये पहला शरीर से भी है। तो ये जो देहांतरण होता है ये केवल सूक्ष्म चेतना के द्वारा ही होती है, जिसके कारण है मन। तो इसलिए ये जो मन की जो स्थिति है इसको समझना इतनी आसानी नहीं है। हम केवल एक कंसेप्ट ले सकते हैं, परंतु यह मन जो कुछ सोच रहा है इसके परिणाम क्या होगा ये नहीं जानते हैं। यद्यप्यते न पश्यन्ति लोभ अपहत चेतसा, क्योंकि जब तक चेतना इस प्रकार काम भोग में लगा रहता है, लोभ अपहत चेतसा, यद्यप्यते न पश्यन्ति लोभ अपहत चेतसा कुलक्षयं कृतं दोषम्। ये कर्म का क्या दोष है इसको हम तब तक नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये हमारी सब मन विकार से उत्पन्न हुई है। परंतु इसकी फल देने वाला कौन है? दैव चोदितम, जतो जतो धावति दैव चोदितम मन विकारात्मकं आप पंचसु। इसलिए पंचभौतिक शरीर जब प्राप्त होता है जीवात्मा को, ये सिर्फ डिसीजन लेते हैं भगवान, क्या है, जंतुर्देह उपपद्यते कर्मणां दैव नेत्रेण, दैव की दृष्टि है फाइनल वो करते हैं, जंतुर्देह उपपद्यते। तो ये जो जंतु जो ये शरीर को ही जनता बनाए हैं, स्केज बनाए हैं, फ्रिजिन हाउस बनाए हैं, तो उसमें स्वयं ही कर्म करता है और इसके फल भगवान प्रदान करते हैं। गुणेशु माया रचितेशु देहसु, तो गुण की द्वारा फिर माया देवी ने सुंदर फ्रिजिन हाउस बना देते हैं ये आत्मा के लिए, प्रपद्यमाना सहतेन जायते। परंतु जो इस माया की स्वामी की अधीनता स्वीकार कर लेता है तो फिर उस प्रकार शरीर प्राप्त नहीं करता है। मामे व ये प्रपद्यन्ते मायाम एतम तरंतिते, तो इसलिए आत्मा के लिए ये जो प्रकार की हम जो सोच रहे हैं कर रहे हैं ये सब एक ड्रीम है, ये केवल सपना है। और तभी तक ये इस ड्रीम छूटता नहीं है जब तक हम जगते नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवा जागो जीवा जागो गौरा चांद बोले। तो क्या हम लोग जब घंटी बजाते हैं मंगल आरती उठने के लिए ही जागृत होना है? वास्तविक हम उठ करके केवल बैठना नहीं है, उस समय भी स्वप्न दशा रहता है, स्नान करना चाहिए। फिर स्नान करके जब हम मंगल आरती आरते हैं भगवान के सामने खड़े रहते हैं तब फिर वो स्वप्न दूर होता है, वास्तविक सत्य को दर्शन करते हैं। इसलिए कहते जो निद्रा है कत निद्रा जाओ माया पिसा चिरा कोले, तो माया देवी ने जो शरीर दिए हैं ये शरीर को सुख प्रदान करने के लिए, इंद्रियों को सुख देने के लिए जो कार्य करते हैं ये एक प्रकार की स्लीपिंग स्टेज है। तो इसलिए जागृत करना है किसको? चेतना को। ये चेतना ही बंधन में है, जब यह चेतना फिर कृष्ण की ओर से बदल जाए तो इसको कहते हैं कृष्ण चेतना व कृष्ण भावनामृत। ये अमृत है और ये चेतना क्या है? मृत है, क्योंकि ये शरीर असन्न क्लेश सदा देह, ये बार बार मरेगा फिर बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये चेतना को प्राप्त करने के लिए इसको ज्ञान व विज्ञान की आवश्यकता नहीं है। माध्वाचार्य ने एक श्लोक कोट किए हैं किस प्रकार विज्ञान के द्वारा हम ये समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो मेटाफिजिक्स है जिसको हम विज्ञान कहते हैं ये सिर्फ मैटर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, परंतु इस मैटर के अंदर जो चेतना है किस प्रकार की परिवर्तन होता है उसके बारे में इस विज्ञान इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है। तो कहते वो विज्ञान है जो विज्ञान भक्ति से उत्पन्न होता है, जो अनुभूति भक्ति से उत्पन्न होता है, तो वो अनुभूति होने पर ही इस माया आवरण से हम छूट सकते हैं। भक्ति परेशानुभाव, जब पर ईशानुभाव उत्पन्न होता है। तो पंचम स्कंद में जो ऋषभदेव जो उपदेश दिए हैं, तो श्लोक में माध्वाचार्य ने आध्यात्म से एक श्लोक कोट की है एक पुस्तक से, कि आत्मानम अभिहितम कर्म व्रज्यति बा एनः कर्म मनः कामस्य च परित्यागः निराहारः आहु आत्मनः। वो कहते हैं कि जब सिर्फ मन यह सोच ले कि मैं शरीर के लिए कार्य नहीं करूंगा बा इंद्रियों की ग्रैटिफिकेशन वा उनकी तृप्ति के लिए मैं कर्म नहीं करूंगा, किसके लिए कर्म करूं ना, एक्चुअली लिविंग एंटिटीज कैन नॉट बी टोटली डिजायरलेस, को कभी भी वासना से मुक्त नहीं हो सकता है, बट व्हेन ही डिजायर्स द बेनिफिट ऑफ द सोल एंड नथिंग एल्स ही इज सेड टू बी डिजायरलेस एंड वन शुड परफॉर्म एक्टिविटीज ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ सोल, एनी अदर एक्टिविटीज शुड बी गिविन अप। When a person is situated in this way, he is said to be desireless. तो ये जो अवस्था जब प्राप्त होती है जिसको हम कहते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, तो आत्मा की प्रसन्नता प्राप्त होने पर ही ये भावना होती है। जब भी ब्रह्म का जो मेन सिम्टम्स है थ्री विजेस विज ऑफ सोल, यह सत चित और आनंद, तो आनंद की दो साइड इफेक्ट हैं, वो है सत और चित्त। तो आनंदमय अवस्था को जीव जब तक प्राप्त नहीं करता है तब तक ब्रह्म ज्योति तक जा सकता है। भगवत धाम को जाने के लिए उनको पूर्ण आनंदमय अवस्था को प्राप्त करना पड़ेगा, जिसके कारण से भगवान उद्धव को ब्रजभूमि को प्रेरित किए कि जाओ आप सीख के आओ। उद्धव ज्ञानी भक्त हैं, प्रीति न जावत मई वासुदेव, ऋषभदेव भी कहते हैं कि जब तक इस प्रकार प्रेम उदय नहीं होता है तब तक ये कर्म बंध है। तो उद्धव ने जब गोपियों की स्थिति को देखे, अवलोकन किए, अनुभव किए, तो वास्तविक वो जान लिए कि मेरे जो सर्टिफिकेट है पैराडाइज से मैं प्राप्त किया हूं जो स्वर्गलोक की यूनिवर्सिटी से, कहते वो बेकार है। इसलिए उन्होंने प्रार्थना की, आशा बहे चरण रेणु जुसाम अहम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लता औषधीनम, क्योंकि ऐसे प्रेमी भक्तों की चरण रज प्राप्त होने से मुझे वो भगवत तृप्ति प्राप्त होगी। क्यों ना, कहते हैं कि जब तक प्रेमी भक्तों की चरण रज से स्नान नहीं किया है तब तक ये भावना को कोई प्राप्त नहीं हो सकता है, प्रहलाद जी कहते हैं। इसलिए कहते हैं ज्ञानम परमम गुह्य, ये ज्ञान की परम गुह्य विषय है। मनमना भव मदभक्त, जो प्रभुपाद कोट कर रहे हैं कि मन को युक्त करना है किसमें, नहीं आनंद घन वस्तु स्वरूप चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण में, क्योंकि वो प्रीति के स्वरूप है, आनंद चिन्मय रसा उनकी शरीर में ही आनंद है, प्रतिभाव स्थावित। तो जो इसी प्रकार भगवान के चिंतन करता है तो निश्चित रूप से उनको आनंदमय शरीर प्राप्त होगा। इसलिए भगवान कहते हैं जंग जंग व्यापी स्मरण भावम तेजंते अंते कलेबरम, परंतु जो भगवान को चिंतन करता है भगवान कहते हैं वो मुझे प्राप्त करता है। माम एति न संशय, इसलिए भगवद गीता की जितनी सारी उपदेश है केवल मन को भगवान में लगाने के लिए, मन मना भव मया सक्त मना पार्थ मयैव मना आध्वस्व मयि बुद्धि निवेश, सिर्फ यही है भावना कि अर्जुन ने नहीं चाह रहा था, भगवान कह के तस्मा सर्वेशु कालेषु मांग अनुस्मर युद्ध, युद्ध तो करना है परंतु ये मत भूलो अर्जुन कि मैं ही डुअर हूं। आपको विजय प्राप्त होने पर आप ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं निष्कंटक राज्य भोग करूं। इसलिए प्रभुपाद इस तात्पर्य को समाप्त करते हैं कि वो कहते हैं कि जो इसी प्रकार भगवान की दिव्य जन्म और कर्म को ठीक रूप से समझ जाता है, पुनर्जन्म न एति माम एति, वो मुझे ही प्राप्त करता है, उसको बार बार ऐसे भौतिक शरीर कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को उन्होंने इतनी सरल तरीका से प्रस्तुत किए, कुछ नहीं, चैंट हरे कृष्ण, केवल चेतना को जागृत करने के लिए, ये आनंद अवस्था को प्राप्त करने के लिए सिर्फ ये नाम का कीर्तन करो, क्योंकि नामा नामी अभय दत्वम, इसमें ही आनंद स्वरूप है, नाम चिंतामणि कृष्ण श्री कृष्ण रस विग्रह, इसमें ही आनंद रस है। तो इसलिए जो आदर पूर्वक जो इस नाम को ग्रहण करता है आदरेण, तो उनको प्रति मुहूर्त में इस आनंद की अवस्था इस शरीर में रहते हुए भी अनुभव होता है, और ये शरीर को त्याग करने के बाद फिर उनको ऐसे आनंदमय शरीर प्राप्त होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। किसकी कोई प्रश्न है? यस प्लीज।
What is the exact meaning of spiritual perfection?
उनकी प्रश्न है कि वास्तविक आध्यात्मिक पूर्णता क्या है, यह ना? तो अधि आत्मा, अर्जुन ने प्रश्न किया है आठवां अध्याय में, किंग तद ब्रह्म किंग अध्यात्म किंग कर्म पुरुषोत्तम आधि भूतं च किंग प्रोक्तं आधि दैवं किमुच्यते। तो आठवां अध्याय की दूसरा श्लोक में, नहीं तीसरा श्लोक में भगवान उत्तर देते हैं, क्या देते हैं? भूत भाव भवत कर्म विसर्गं कर्म संगीतम, उसका पहला श्लोक क्या, लाइन क्या है? अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते। अक्षरम जो क्षरित नहीं होता है वो ब्रह्म, किंग तद ब्रह्म पूछते, अक्षरम जो क्षरित नहीं होता, अक्षरम ब्रह्म परमम, उसके जो स्वभाव है, जो आनंद अवस्था है, क्या है उनके स्वभाव? सच्चित आनंद है। स्वभाव अध्यात्म उच्यते, तो अध्यात्म किसको कहते हैं? उनके स्वभाव को, उनके नेचर, उनके नेचर है सच्चित आनंद, तो अध्यात्म का अर्थ है सच्चित आनंदमय है।